तारीख 3 जून, दिन बुधवार। दिन भर के श्रोताओं को समीर आत्मज मिश्र का नमस्कार। बढ़ती जा रही हैं मैगी नूडल्स की मुश्किलें। कई राज्यों ने नमूनों की जांच के दिए आदेश। दिल्ली सरकार ने 15 दिनों तक मैगी की बिक्री पर लगाई रोक।
मैगी के ऊपर बैन लगाया है और कंपनी को आदेश दिया जाता है कि वो अपना दिल्ली के अंदर जितना भी स्टॉक है उस सारे स्टॉक को हटा ले।
अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर गरमाया। भाजपा सांसद विनय कटियार ने कहा सरकार करे पहल।
चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री थे और 4 महीने रहे, समस्या का समाधान के करीब पहुंच गए थे। अगर महीने भर और बने रहते तो राम मंदिर उस समय बन गया होता।
दुनिया जहान में चर्चा होगी अमेजन के जंगलों में रेलवे लाइन बनाने से पर्यावरण पर पड़ने वाले असर पर। होंगी खेल की भी खबरें, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में नेस्ले के मैगी नूडल्स की बिक्री पर 15 दिन की रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 15 दिन बाद मैगी के नए स्टॉक की फिर जांच की जाएगी और अगर उसे भारतीय खाद्य मानकों के अनुकूल पाया गया तो ही उस पर लगी रोक हटाई जाएगी। मैगी में जांच के दौरान सीसे और MSG की मात्रा ज्यादा पाई गई थी। उधर केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार लैब में गए मैगी के नमूनों की जाँच के नतीजे आने का इंतजार कर रही है। अगर कानून का उल्लंघन पाया गया तो इससे सख्ती से निपटा जाएगा। बांग्लादेश मूल की लेखिका तस्लीमा नसरीन अपने देश के चरमपंथियों से लगातार मिलने वाली धमकियों के बाद भारत से अमरीका चली गई हैं। न्यूयॉर्क की मानवाधिकार संस्था सेंटर फॉर इंक्वायरी के अध्यक्ष और CEO रोनल्ड लिंडसे ने कहा कि अपने जीवन पर खतरे को देखते हुए तस्लीमा ने भारत छोड़ने का फैसला लिया। संस्था की एक प्रेस रिलीज के अनुसार अलकायदा से जुड़े चरमपंथियों से तस्लीमा नसरीन को मौत की धमकियां मिल रही थीं। उधर तस्लीमा ने ट्वीट करके कहा कि उन्होंने भारत पूरी तरह से छोड़ा नहीं है, भारत ने हमेशा उन्हें सुरक्षा प्रदान की है, वह जब भी सुरक्षित महसूस करेंगी वापस भारत आ जाएंगी। दक्षिण अफ्रीका ने एक बार फिर इस बात से इनकार किया है कि उसने देश में फुटबॉल विश्व कप 2010 आयोजित करवाने के लिए फीफा को रिश्वत दी। दक्षिण अफ्रीका के खेल मंत्री फिकले मुम्बा लोला ने पत्रकारों को बताया कि दक्षिण अफ्रीका अमेरिका की फीफा में भ्रष्टाचार संबंधी जांच में पूरा सहयोग देगा, लेकिन फीफा और अमेरिका के बीच हो रही लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेगा। ये ब्रिटिश और अमरीकियों के बीच की लड़ाई है और हम निहित स्वार्थों का हिस्सा नहीं हैं। हमने साम्राज्यवाद से संघर्ष किया है, उसे हराया भी है और आज भी जहां कहीं हमें ये दिखेगा हम इससे संघर्ष करेंगे। दुनिया में जो ताकतें पुलिसमैन की तरह बर्ताव कर रही हैं उनके सामने हमारी एक ही नीति है, सबको साथ लेकर चलने की नीति। ये थे फिकिले मुम्बालुला के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। मिस्र के गीज़ा पिरामिड के करीब बंदूकधारियों ने हमला किया है। गीज़ा मिस्र का सबसे मशहूर पर्यटक स्थल है। मोटरसाइकिल पर सवार बंदूकधारियों ने गीज़ा की तरफ जाते हुए 2 पर्यटक पुलिस अधिकारियों को गोलियों से भून डाला। पिछले कुछ वर्षों में मिस्र के अस्थिर राजनीतिक हालात से विदेशी पर्यटन उद्योग प्रभावित हुआ है। अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह हमला किसने किया, लेकिन साल 2013 में मिस्र के इस्लामिक राष्ट्रपति मोहम्मद मोरसी के तख्तापलट के बाद से देश में चरमपंथी हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पुलिस का कहना है कि उन्होंने अस्थायी शरण स्थलों में रह रहे बच्चों और महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। पुलिस को वहां कुछ हमलों और बलात्कार के प्रयासों की रिपोर्टें मिली थीं। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि बच्चों और महिलाओं को जूडो की शुरुआती दांव सिखाए जा रहे हैं। BBC समाचार।
BBC हिंदी से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। कार्यक्रम में सबसे पहले बात करते हैं मैगी नूडल्स की, जिसका जिक्र अभी आपने समाचारों में भी सुना। राज्य सरकारें लगातार मैगी को लेकर अपनी भ्रिकुटी तानती दिख रही हैं। मैगी नूडल्स के नमूनों में तय मात्रा से ज्यादा लेड और मोनोसोडियम ग्लूटामेट होने के आरोपों के बाद देश भर में कई राज्यों ने इसकी जाँच के आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार की जांच में भी ये तत्व निर्धारित मात्रा से ज्यादा मिले हैं और इस वजह से दिल्ली सरकार ने मैगी की बिक्री पर 15 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली सरकार ने मैगी नूडल्स बनाने वाली कंपनी नेस्ले को कहा है कि वो दिल्ली से अपने मौजूदा स्टॉक को तुरंत हटा लें। उधर केंद्र सरकार का कहना है कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए जल्द ही एक नया कानून बनाया जाएगा। सुनिए रोहित जोशी की ये रिपोर्ट।
बुधवार को नेस्ले के अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया है कि दिल्ली सरकार ने मैगी पर 15 दिन का प्रतिबंध लगाया है। साथ ही उन्होंने बताया कि मैगी की निर्माता कंपनी नेस्ले को कहा गया है कि वे बाजार में मौजूद मैगी का सारा स्टॉक हटा ले।
मैगी के ऊपर बैन लगाया है और कंपनी को आदेश दिया जाता है कि वो अपना दिल्ली के अंदर जितना भी स्टॉक है उस सारे स्टॉक को हटा ले और नया स्टॉक प्रॉपर चेकिंग कराने के बाद ही दिल्ली के अंदर यूज़ करें और जो भी एज पर द लॉ रिक्वायरमेंट्स हैं वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं उनको इनिशिएट करने के आदेश दे दिए गए।
जैन ने बताया है कि मैगी की जांच में MSG और लेट पाए जाने के चलते इसे प्रतिबंधित किया गया है। दिल्ली के अलावा कर्नाटक, हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गोवा और तेलंगाना के साथ ही कुछ और प्रदेशों ने भी मैगी के सैंपलों की जाँच के आदेश दिए हैं। केरल ने अपने 1000 से अधिक सरकारी रिटेल आउटलेट्स में मैगी पर अस्थायी तौर पर प्रतिबंध लगा दिया है। उधर तेलंगाना के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री सी लक्ष्मा रेड्डी ने बताया है कि तेलंगाना में भी मैगी की जांच के लिए सैंपल ले लिए गए हैं और रिपोर्ट आ जाने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी।
22 सैंपल्स ले लिए पूरा डिस्ट्रिक्ट से, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, उसको ऑलरेडी लैब को भेजे है, वो 2 वीक में रिजल्ट आता उसका। वो रिजल्ट आने के बाद उसमें कंटेंट्स क्या रहता, कैसा है, क्या करना, जब सोच के कुछ उसके ऊपर डिसीजन लेने का सोच रहे हैं।
दूसरी तरफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी देश के अलग अलग राज्यों से मंगाए गए मैगी के नमूनों की MSG और लेड के लिए जांच कर रही है। केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता एवं जन वितरण प्रणाली मंत्री रामविलास पासवान ने ऐसे मामलों को गंभीर बताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार उपभोक्ता सामग्री या खाद्य सामग्री में गड़बड़ी करने वालों से निपटने के लिए एक नया कानून बनाने जा रही है जिसमें सजा के बतौर उम्र कैद का भी प्रावधान होगा। बिहार में मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने मैगी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। रामविलास पासवान ने भी उत्पादों का प्रचार करने वाले सेलिब्रिटीज के बारे में कहा है कि अगर वे प्रचार के दौरान गलत जानकारियां देते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।
जो सेलिब्रिटीज है, जो जो ब्रांड एम्बेसडर्स वगैरह हैं, वो क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या कहा है कि उसके गुण के संबंध में क्या क्या चीजें कही है, वो गुण जो है वो सही है कि नहीं है, जो कंटेंट्स उन्होंने कहा है वो सही है कि नहीं है, उसके ऊपर में जांच होगी। यदि मानते हैं कि उन्होंने जो कहा है और जो उसका रिजल्ट है उसके खिलाफ में है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ में भी कार्रवाई होगी।
मैगी नूडल्स में स्वास्थ्य मानकों की इस कथित अनदेखी को लेकर जिस तरह एक के बाद एक राज्य सरकारें इस पर गंभीर दिखाई दे रही हैं, ऐसे में इसे बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं।
तो मैगी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मैगी ही नहीं बल्कि दूसरे फास्ट फूड्स को लेकर के भी अक्सर विवाद होते रहते हैं। रिपोर्टें आती रहती हैं कि इनसे स्वास्थ्य को नुकसान होता है, किस तरह का नुकसान होता है और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक तत्वों को इनमें शामिल करने की क्या मजबूरी है। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने बात की सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE के वैज्ञानिक अमित खुराना से।
हमारी फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने एटलीस्ट इस चीज के लिए बहुत क्लियरली बता दिया है कि लेड इतना अलाउड होना है, MSG एडेड नहीं होना चाहिए। अब इसमें अगर लेड की मात्रा मिलती है जो कि 17 PPM, जैसे मैं अगर UP की रिपोर्ट को मानूं, हमने तो टेस्ट नहीं किया, अगर जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से मानूं तो ये काफी काफी ज्यादा मात्रा है। आज सुनने में आया है कि दिल्ली ने भी टेस्ट किया तो उनको भी मिला, तो ये सर्टेनली बैच का इशू तो नहीं है, थोड़ा सा कुछ उसके आगे बढ़ के बात है। इसमें देखने की बात यह है कि कंपनी का इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल जो प्रोसेस है वो इंश्योर करना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड है वो एंड प्रोडक्ट के वो मीट हो, क्योंकि जिम्मेदारी अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट की है और किसी एंड प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट मार्केट में जो लेके आ रही है उसी कंपनी की है। रही बात कि हमारी फूड सेफ्टी अथॉरिटी के रेगुलेशंस कैसे हैं, इस केस में बिल्कुल क्लियर है तो उनमें कोई कमी नहीं है। रही बात स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी की या स्टेट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की, तो बहुत कमेंडेबल है, ये इंडिया में ऐसा ज्यादा देखने को नहीं मिलता है और हम लोग वेलकम करते हैं।
जितना ये एक्सेस बताया गया है लेड, इससे दिक्कतें क्या आ सकती हैं लोगों को, खासतौर पर बच्चे ज्यादा इस तरह के प्रोडक्ट्स खाते हैं?
जी, जैसा जितना मैं समझता हूँ जो लिमिट है उससे काफी ज्यादा मात्रा में लेड मिला है यूपी वाली रिपोर्ट में। लेड एक हैवी मेटल है, टॉक्सिक हैवी मेटल की कैटेगरी में आता है। बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता है और एक्यूमुलेट हो जाता है। तो किडनी जो है वो सबसे पहले इफेक्ट होती है। इसके अलावा लेड पॉइजनिंग बहुत एक बच्चों में खास तौर पे एक इशू है, और ये भी कहा जाता है कि प्रेग्नेंट और लेडीज में बच्चे की जो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है या नर्वस सिस्टम डेवलप जो हो रहा था उसमें उसकी डेवलपमेंट में इम्पेयर करता है। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज और तरह की नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेड पॉइजनिंग का एक पार्ट ऑफकोर्स ये भी है कि एनीमिया और लीवर में भी उसके उसके पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है क्योंकि ये टॉक्सिक एलिमेंट है तो बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज को इफेक्ट करता है अलग अलग तरीके से।
जी मुझे ये लग रहा है कि एक प्रोडक्ट का तो मामला सामने आ गया है, लेकिन बाकी ओवरऑल क्योंकि आजकल तो पैक्ड फूड का ही जमाना है, लोग लेते हैं और वो विज्ञापन देखते हैं, बाजार में जाते हैं, सामान खरीद लेते हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती कि इसके अंदर है क्या, इससे नुकसान क्या हो सकता है। तो क्या बाकी सारे प्रोडक्ट्स को एक बार ये चेक नहीं किया जाना चाहिए या उनकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए बाजार में उतारने के पहले?
फंडामेंटली अल्ट्रा प्रोसेस फूड है ये, और अल्ट्रा प्रोसेस फूड में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव और एडिटिव और केमिकल्स बेसिकली डाले जाते हैं। सर्टनली उन सबके क्या लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्प्लीकेशन है वो कंज्यूमर को नहीं पता है। सर्टनली उसमें वो उन सबके बारे में सही लेबलिंग जो होती है, सही जो डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, उसमें बहुत स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और है जो कि हम देखते हैं। तो ऑफकोर्स ये फूड लार्जर इशू है फूड सेफ्टी का पैकेज प्रोडक्ट्स को लेके। लेकिन रही बात लेड की और प्रोडक्ट्स में, तो वो मैं नहीं कह सकता जब तक कोई लैब रिपोर्ट टेस्ट ना करे। तो फिलहाल तो लेड का इशू या MSG का इशू तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड ही है।
अमित जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से सिगरेट पर या पान मसाले के पैकेट पर एक वैधानिक चेतावनी दी जाती है, क्या वक्त आ गया है कि जो फास्ट फूड है, जो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिसकी इतनी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग नहीं होती, उसके ऊपर भी इस तरह की कोई चेतावनी जारी की जाए?
ये तो जरूर है कि बहुत बहुत कुछ अभी सही तरीके से डिस्क्लोजर होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का, कितना यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है। और ये भी है कि अगर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट यूज हो रहा है जो टॉक्सिक है, ऐसा इंग्रेडिएंट है जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जैसे चिल्ड्रन है, वल्नरेबल है या एल्डरली है, उनके लिए ठीक नहीं है या एलर्जिक है, तो उसके बारे में क्लियरली बताना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।
ये थे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के वैज्ञानिक अमित खुराना। और अब चर्चा राजनीतिक खबरों की। अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर केंद्र सरकार के कार्यकाल का एक साल बीत गया है, लेकिन इस मामले में वो लगभग मौन है। वहीं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही आवाजें उठने लगी हैं। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े पार्टी के सांसद विनय कटियार का कहना है कि लोकसभा में बहुमत आने के बाद अब सरकार को इस बारे में पहल करनी चाहिए, लेकिन सवाल उठता है कि अचानक इस मामले को उठाने के पीछे वजह क्या है। इन्हीं मुद्दों पर अब से कुछ देर पहले मैंने विनय कटियार से बात की।
जो भी देश के प्रधानमंत्री रहे, जब से जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ है तो हम लोगों ने दबाव बनाया है और राम मंदिर बनना चाहिए अयोध्या में, ये हमारी सबकी मांग रही है। और उसमें से चाहे बातचीत के माध्यम से या कानून बनाकर या अदालत के द्वारा, तीन ही उसके ऑप्शन है, और उसके द्वारा राम मंदिर का निर्माण हो। हाई कोर्ट ने, लखनऊ बेंच की हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया ये राम की जन्मभूमि है, तो ऐसी स्थिति में सभी को मान्य करना चाहिए, मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को भी मानना चाहिए। और इसीलिए सरकार को चाहिए कि वो बातचीत का दौर प्रारंभ कर, बातचीत आगे बढ़ेगी, बातचीत होते रहना चाहिए, तो इससे एक दूसरे की भावनाओं का भी पता चलेगा, निकटता आएगी। फिर अगर लगता है कि नहीं है तो फिर हम संसद के अंदर कानून बनाएं।
आपने कहा कि पहले के जो प्रधानमंत्री थे उनसे हमने इसके बारे में बात की थी, तो अभी मौजूदा प्रधानमंत्री से भी संबंध में कोई बात हुई है क्या? आपकी पार्टी की ही समय सरकार है।
हाँ हाँ, तो इसीलिए बातचीत करने जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत इस बात की है कि बातचीत प्रारंभ की जाए मुस्लिम संप्रदाय से। और जो नरेंद्र मोदी की मुसलमानों के साथ बातचीत हुई है ये स्वागत योग्य है, ये क्रम और बढ़ना चाहिए। नहीं अगर निकलता है तो भाई संसद के अंदर कानून बनाएं। हम कह सकते हैं कि हमारा बहुमत नहीं है, लेकिन हमारा लोकसभा में तो बहुमत है, तो लोकसभा में हम बनाएंगे कानून। राज्यसभा हमारा बहुमत नहीं है तो देखेंगे, होगा तो अगर ज्वाइंट सेशन बुला करके अगर संख्या पूरी होती तो करेंगे, नहीं तो हम देश की जनता को तो बता सकते हैं भाई हमारा बहुमत था, हमने यहाँ तक हम ले आए।
जी देखेंगे विनय जी, लेकिन कुछ दिन पहले आपकी पार्टी के अध्यक्ष, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह जी ने ये कहा था कि राम मंदिर के लिए लोकसभा में हमें कम से कम 370 सीटों की जरूरत है, तो क्या जो अभी का बहुमत है?
मैं उनकी बात पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मुझे जो मालूम है कि संसद के अंदर भी कानून बनाया जा सकता है, नहीं तो अदालत से
निर्णय जल्दी हो जाए।
आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी की मुस्लिम समुदाय से बातचीत हुई है, तो क्या मंदिर के निर्माण के मसले पे भी कोई चर्चा हुई है क्या?
नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ कि किस मुद्दे पर हुई है। मुझे लगता है सद्भावना के लिए लोग आपस में मिले हैं।
विनय जी, मंदिर
चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री थे और 4 महीने रहे, समस्या का समाधान के करीब पहुंच गए थे। अगर महीने भर और बने रहते तो राम मंदिर उस समय बन गया होता। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बहुत सारा प्रयास किया और वो भी अंतिम स्थान तक पहुंच गए थे। बातचीत उनकी लगभग फाइनल हो चुकी थी, लेकिन उसी समय लोकसभा के चुनाव आ गए, वो मामला लटक गया, सरकार नहीं बनी।
तो सरकार, एक साल बीत गया है, क्या सरकार ने इस बारे में कोई कोशिश की है, कोई कदम उठाए हैं, ऐसा आपको लगा या आपने पूछा है?
मुझे जानकारी नहीं है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी किसी भी प्रकार का कोई कदम उठाया नहीं है।
तो अभी एक साल विनय जी बीत गया है, नहीं उठाया गया, तो आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार इस मुद्दे को थोड़ा सा पीछे रखना चाहती है?
नहीं, मेरा कहना बातचीत चला मैं उसमें मुद्दा पीछे क्या, अगर किसी से आपस में बातचीत हो सकती है
नहीं,
तो
जिस बातचीत चलाएंगे, जिस तरह
तो
का ये बयान देना कि 370 सीटें जरूरत है उसके लिए, तो ये तो यही लगता है कि मामले को टालने की कोशिश है कि अभी इस मुद्दे से हम अपना ध्यान हटा रहे हैं।
नहीं, लेकिन मैंने कहा ना, मैं उनके बयान पर तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जब तक विनय कटियार हैं तब तक राम जन्मभूमि मंदिर के मुद्दे को भुलाया नहीं जा सकता है।
विनय जी, आप मंदिर निर्माण से शुरू से, मंदिर आंदोलन से शुरू से ही जुड़े रहे हैं, आपने कहा बातचीत होनी चाहिए, आपने अपनी तरफ से क्या कोई पहल की है मुस्लिम समुदाय से बातचीत की?
नहीं, हमने अपने तरफ से नहीं की है, मैंने बहुत पहले की थी बातचीत, आगे बढ़ी थी, लेकिन जब सरकारें आई, सरकारें वहां शुरू कर दिया तो अच्छा कदम हो गया।
ये थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनय कटियार। इनका कहना है कि राम मंदिर के लिए सरकार को, यानी केंद्र सरकार को, पहल करनी चाहिए।
दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे और रात 9:30 बजे।
कार्यक्रम दिन भर आप सुन रहे हैं समीर आत्मज मिश्र से। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की ओर। फिलीपींस के राष्ट्रपति बेनिग्नो एक्विनो ने दक्षिणी चीन सागर में चीन के रवैये की आलोचना की है, और इसकी तुलना उसने दूसरे विश्व युद्ध से पहले इस इलाके में नाजी जर्मनी के विस्तारवादी रवैये से की है। इस पर चीन ने आश्चर्य जताया है और कहा है कि दक्षिणी चीन समुद्र के एक बड़े हिस्से में उसकी संप्रभुता है, जिसका दावा वो लगातार करता रहेगा। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुना रहे हैं रोहित जोशी।
चीनी सरकार ने कहा है कि इस बात से उसे गहरा आश्चर्य हुआ है कि फिलीपींस के राष्ट्रपति ने दक्षिण चीनी समुद्र में चीन के रवैये की तुलना दूसरे विश्व युद्ध के पहले के नाजीवादी जर्मनी के विस्तारवाद से की है। टोक्यो में व्यावसायिक प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए फिलीपींस के राष्ट्रपति बेनिग्नो एक्विनो ने चीन की आलोचना करते हुए उसे नाजीवादी जर्मनी के दौर की तरह विस्तारवादी बताया, और साथ ही इसमें यह भी जोड़ा कि दुनिया को चीन के इस रवैये पर आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। फिलीपींस के राष्ट्रपति के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन ने कहा है कि दक्षिणी चीनी समुद्र के एक बड़े हिस्से में उसकी संप्रभुता है और वो वहां मौजूद द्वीपों पर लगातार अपना दावा करता रहेगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ च्विनिंग ने फिलीपींस के राष्ट्रपति के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि उल्टा फिलीपींस ने चीन के द्वीपों पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। मैंने इससे जुड़ी खबरों पर ध्यान दिया है। मैं फिलीपींस के नेता की ओर से की गई इस बेतुकी टिप्पणी से बुरी तरह आश्चर्य में हूँ। मैं इससे पूरी तरह असहमत हूँ और आपत्ति जताती हूँ। दक्षिण चीनी समुद्र विवाद असल में ये है कि फिलीपींस ने जबरदस्ती 1990 से चीन के नानसा द्वीप के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया हुआ है। ये थे चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ च्विनिंग के शब्द। उधर फिलीपींस के राष्ट्रपति के इस बयान के बाद अमरीका ने चीन को इस तरह का रवैया न अपनाने को कहा है।
रिपोर्ट सुना रहे थे रोहित जोशी। और आज की खास रिपोर्ट, पिछले महीने दक्षिण अमरीकी देशों के दौरे पर गए चीन के प्रधानमंत्री ली केशियांग ने जब ब्राज़ील और पेरू के बीच अमेजन से होकर गुजरने वाली रेल लाइन बनाने का प्रस्ताव रखा तो दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन की ओर सबका ध्यान गया। चीन की ये महत्वाकांक्षी परियोजना अमेजन और पृथ्वी के वातावरण के लिए क्या असर पैदा करेगी, आज दुनिया जहान में इसी बात की पड़ताल कर रहे हैं निखिल रंजन।
दुनिया जहान। पृथ्वी पर जितने जीव हैं उनमें से एक तिहाई को अगर देखना है तो दक्षिण अमेरिका के अमेजन वर्षावनों में आइए। अमेजन नदी से जुड़ा ये जंगल करीब 5.5 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आया। पिछले 21,000 सालों में यहाँ बहुत सारे बदलाव हुए हैं और जंगल का इलाका बहुत सिमट गया है। बावजूद इसके ये पूरी दुनिया के वर्षा वनों का आधा से ज़्यादा हिस्सा है, जिसके 55 लाख वर्ग किलोमीटर का दायरा 9 देशों की भौगोलिक सीमाओं में बटा है। जंगल के 390 अरब वृक्षों में 16,000 से ज़्यादा प्रजातियां मिलती हैं और साथ ही ये 400 से ज़्यादा आदिम जनजातियों का भी बसेरा है जिनका संबंध बाहरी दुनिया से रहा है। जंगल और जंगल के जीव एक दूसरे का भरण पोषण करते रहे हैं। मानव विज्ञानी टॉम ग्रिफिन्स ने जंगल और इंसान के सहजीवन का गहराई से अध्ययन किया है।
Current estimates are anything between 1 and even 4 million people living in the basin.
एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 40 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि यह जमीन काफी उपजाऊ है, जिसे इन जनजातियों ने बहुत अच्छी तरह से अपनी खेती और बागवानी के तकनीकों के जरिए विकसित किया है।
युगों युगों से चला आ रहा अमेजन के जीव और जंगल का संबंध अब खतरे में है। असंतुलन बढ़ रहा है क्योंकि इंसान की नज़र जंगल के उस खजाने तक पहुंच गई है जो ऊपर से नज़र नहीं आता। 70 के दशक के बाद यहां भारी पैमाने पर जंगलों की कटाई हुई है और एक रिसर्च के मुताबिक 1977 से 2005 के बीच अमेजन में हर साल 10,000 वर्ग किलोमीटर जंगल काट दिए गए। टॉम ग्रिफिन्स:
Much of the area is rich in minerals. Gold is one. Oil and gas.
ज्यादातर हिस्सा खनिजों से धनी है, इनमें सोना एक है। तेल और गैस भी बड़ा संसाधन है जिसे हासिल करने के लिए कंपनियां सरकार के साथ काम कर रही हैं और दूर दराज के इलाकों तक जाकर खुदाई कर रही हैं। अमेज़न के 70% हिस्से में भारी पैमाने पर खनिज, तेल, गैस, लकड़ी और दूसरी चीजों के लिए मोलभाव हो रहा है।
अमेज़न के जंगलों का करीब 60% ब्राज़ील में, 13% पेरू में, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा थोड़ा थोड़ा करके वेनेजुएला, इक्वेडोर, बोलीविया, गुयाना, सुरीनाम और फ्रेंच गुयाना में है। इन जंगलों से निकला सामान यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया के उभरते बाजारों तक जाता है, लेकिन चीन की नज़र उसे कहीं आगे है। चीन के प्रधानमंत्री ली केशियांग ने पिछले महीने की 16 तारीख को 5,300 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाने का प्रस्ताव रखा है। ये रेल लाइन ब्राज़ील से पेरू को जोड़ेगी। चीन को आखिर इस इलाके में इतनी लंबी रेल लाइन की क्या जरूरत है? बीजिंग में रहने वाले भारतीय पत्रकार सैबल दास गुप्ता:
चीन अपना माल सारी दुनिया में फैलाने में आतुर है। उसके लिए एक ट्रांसपोर्टेशन चाहिए और वो ट्रांसपोर्टेशन पे जोर दे रही है, लेकिन आज ब्राज़ील पेरू वाला जो हिस्सा है वहाँ पूरा ट्रांसपोर्टेशन जो है पूरी तरह से एक ही चीज पर निर्भर है, वो है पनामा कैनल पे। और पनामा कैनल पर यूनाइटेड स्टेट्स का पूरा कंट्रोल है और उसमें चीन को लगता है कि कल यूएस उसको रोक सकती है, क्योंकि आखिर जो भी माल बेचेगी, जो भी अपना वाणिज्य बढ़ाएगी, वो तो वेस्टर्न देशों के विरुद्ध में होगा। इसको काटने के लिए वो लोग अलग रूट बनाना चाहते हैं।
रेल लाइन बनना शुरू होने से लेकर पहली ट्रेन चलने तक में कम से कम 1 दशक तक का समय लगेगा और अनुमान है कि इस रेल लाइन पर करीब $10 अरब का खर्चा आएगा। लेकिन जंगल इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाएगा? भारत में जल, जंगल और पर्यावरण के लिए संघर्ष कर रही मेधा पाटेकर:
80% ब्राज़ील की बिजली जिस अमेज़न घाटी से बनती है, उस ब्राज़ील के अमेज़न घाटी के लोगों को उसमें से कितना हिस्सा मिलता है, कितने घर आज भी अंधेरे में है, ये देखने जैसी बात है। तो इसीलिए कि उनके सहमति से जल नियोजन का भी निर्णय नहीं होता है। हम लोग रेलवे पर न सवाल उठाते हुए भी ये जरूर कहेंगे कि प्राकृतिक जंगल के बीच से इस प्रकार से हस्तक्षेप विकास के नाम पर जो उस जंगल का खात्मा करेगा, उसका असर केवल वो जंगलवासी नहीं भुगतेंगे, क्लाइमेट चेंज जैसी बात देश की बाउंड्रीज को भी नहीं मानती तो नदी घाटी की सीमा को क्या मानेगी।
चीन दुनिया के हर कोने में अपने कदमों के निशान पक्के कर रहा है, अपने लिए जमीन तलाश रहा है, रास्ता बना रहा है। अगर ये परियोजना अस्तित्व में आई तो दुनिया की सबसे बड़ी रेल परियोजना होगी और किसी भी देश के लिए इससे जुड़ना कारोबार के लिहाज से फायदेमंद होगा। लेकिन नुकसान उठाएगा अमेजन। और अमेजन का नुकसान केवल दक्षिणी अमेरिका का नुकसान नहीं है। भारत में पर्यावरण के लिए काम करने वाले आशीष कोठारी बताते हैं,
अमेजन के जंगल से जो पूरे विश्व भर की जो बारिश और बाकी जो एक क्लाइमेटिक कंडीशंस है उस पे बहुत अच्छा असर होता है अगर जंगल रहे तो, और जहाँ पे भी कटे हैं तो उससे दो तरह का असर, एक तो जो पूरे विश्व भर की जो वर्षा की जो पूरा पैटर्न है उस पे, और दूसरा जो हम आज जलवायु बदलाव की बात कर रहे हैं उसका भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। जंगल के कटने से कार्बन जो निकलेगा, और उसके अलावा जैसे कि जंगल के होने से धूप आती है वो उसका जो असर होता है वो कम होता है, और जंगल कट जाएगा और खाली जमीन रह जाएगी तो उससे भी धूप का असर बहुत ज्यादा पड़, ज्यादा गर्मी बढ़ रही है और जो जलवायु बदलाव हो रहा है उस पर भी असर ज्यादा पड़ सकता है।
ये बात अब साबित हो चुकी है कि जंगलों को काटकर नई जगह पेड़ों को लगाने भर से इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। विकास और विनाश के बीच फर्क करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन इंसानी कदमों की रफ्तार थोड़ा ठहर कर सोचने को भी तैयार नहीं। निखिल रंजन, बीबीसी दिल्ली।
तो कैसी लगी आपको निखिल रंजन की ये रिपोर्ट, हमें जरूर लिखिएगा। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का।
बीबीसी खेल समाचारों के साथ मैं हूं वैभव दीवान। सबसे पहले खबर फुटबॉल से। फीफा, जो पूरे विश्व में फुटबॉल को गवर्न करती है, पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही है। पिछले हफ्ते फीफा के 9 कार्यकर्मियों से रिश्वत लेने के मामले में पूछताछ की गई, जिसके बाद फीफा के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए। शुक्रवार को हुए फीफा के इलेक्शंस में सेप ब्लैटर प्रेसिडेंट बने, जो अब इस पद से रिजाइन कर गए हैं। कहा जा रहा है कि 17 सालों से फीफा के प्रेसिडेंट सेप ब्लैटर से भी एफबीआई भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ करेगी। इस सभी मामले पर बीबीसी ने बात की कुंवर सिंह से, जो भारत और विश्व के फुटबॉल पर ब्लॉग लिखते हैं। कुंवर कहते हैं,
सेप ब्लैटर का स्टेप डाउन करना एक बहुत ही बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स डाउनफॉल ऑफ फीफा, जो कहेंगे, क्योंकि अब इंटरपोल ने उनका भी नाम सजेस्ट किया है और उन पे भी अब इन्वेस्टिगेशन जारी हो गई है। तो ऑल इन ऑल बहुत ही ग्रेव सिचुएशन है फीफा के लिए और वर्ल्ड फुटबॉल के लिए।
तो फीफा के लिए एक बुरी खबर, पर इस मुद्दे पर फुटबॉल में करप्शन, इस पर विश्व के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले क्या कहते हैं।
My position is like a player. No, I want to see the football put people together.
मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैं चाहता हूँ कि फुटबॉल लोगों को जोड़े, लड़ाइयाँ खत्म करे, क्योंकि यही फुटबॉल कर सकती है। मुझे फुटबॉल में भ्रष्टाचार से कुछ नहीं लेना, ये मेरी समस्या नहीं है।
फुटबॉल से अब चलते हैं टेनिस की ओर। फ्रांस में चल रहा है फ्रेंच ओपन, जहां पर महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत की सानिया मिर्जा अपनी जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस के साथ इस मुकाबले में हार गई। इसी हार से मार्टिना हिंगिस और सानिया मिर्जा इस टूर्नामेंट से भी बाहर हो गई हैं। फिलहाल चल रहा है फ्रेंच ओपन में एक तगड़ा मुकाबला, ये है राफेल नडाल का नोवाक जोकोविच के साथ। ये मुकाबला अभी तक के फ्रेंच ओपन का सबसे बड़ा मुकाबला कहा जा रहा है, जहां पर ये दोनों ही दिग्गज एक दूसरे से क्वार्टर फाइनल में जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं।
और वैभव, फ्रेंच ओपन में अभी ताजा स्कोर क्या है?
ताजा हाल यह है कि मैच जब शुरू हुआ तो राफेल नडाल पीछे चल रहे थे, अब बराबरी करते दिख रहे हैं। 4-4 से पहले सेट में इस समय ताजा स्कोर है, अभी 5-4 हुआ है। जोकोविच ने ये सेट जीता है। अभी अगला सेट देखना है कि कितना अच्छा रहेगा इन दोनों प्लेयर्स के लिए, क्योंकि ये मैच कड़ा होने वाला है। साथ ही सेरेना विलियम्स अपना मुकाबला जीत के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं फ्रेंच ओपन की सिंगल्स मुकाबले में विमेन के।
बहुत बहुत धन्यवाद वैभव दीवान खेल की खबरों के लिए। और अब चलते चलते एक नजर प्रमुख समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में नेस्ले के मैगी नूडल्स की बिक्री पर 15 दिन की रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बांग्लादेश मूल की लेखिका तस्लीमा नसरीन अपने देश के चरमपंथियों से लगातार मिलने वाली धमकियों के बाद भारत से अमरीका चली गई हैं। दक्षिण अफ्रीका ने एक बार फिर इस बात से इनकार किया है कि उसने देश में फुटबॉल विश्व कप 2010 आयोजित करवाने के लिए फीफा को रिश्वत दी थी। मिस्र के गीजा पिरामिड के करीब बंदूकधारियों ने हमला किया है। मोटरसाइकिल पर सवार बंदूकधारियों ने गीजा की तरफ जाते हुए 2 पर्यटक पुलिस अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पुलिस का कहना है कि उन्होंने अस्थायी शरण स्थलों में रह रहे बच्चों और महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। पुलिस को वहां कुछ हमलों और बलात्कार के प्रयासों की रिपोर्ट मिली थी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि बच्चों और महिलाओं को जूडो के शुरुआती दांव सिखाए जा रहे हैं। बीबीसी समाचार।
तो दिन भर के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी अब से डेढ़ घंटे बाद 9:30 बजे कार्यक्रम घटना चक्र में। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी शाकिर आलम ने। अब समीर आत्मज मिश्र को दे अनुमति। नमस्कार।